SBS हिंदी। दोस्तों SBS हिंदी पर आज मिलते हैं एक ऐसी महिला प्रतिभा के साथ जो ऑस्ट्रेलिया की सेना में जुड़ी हुई हैं। नौसेना अधिकारी के रूप में 24 साल का अनुभव रखने वाली लेफ्टिनेंट कमला शर्मा विंग ने जीवन के इस सफर के बारे में बातें साझा की। दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कमला जी अपने भाई के लिए सेना में करियर यानी कि कारकिर्दी के जो विकल्प हैं उनके लिए जानकारी जुटा रही थी। अपने भाई के लिए जानकारी जुटाते हुए वो खुद सेना में भर्ती हो गई, लेकिन उनके भाई सेना में भर्ती नहीं हुए।
तो सभी एशियन परिवार के अनुसार मेरे डैडी बहुत चाहते थे कि मैं भी कोई डॉक्टर इंजीनियर वगैरह वो बनूं, पर मुझे वो डॉक्टर इंजीनियर में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं थी। तो ऐसे ही बात चल रही थी, मैं यूनि में पढ़ रही थी और मेरा भाई भी वही ना डैडी के वही डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो इसी बात में स्ट्रगल हो रही थी। तो एक दिन मेरे डैडी ने कहा कि ये तेरे बेटा भाई को मुझे आर्मी में भेजना है ना, नेपाल में सब आर्मी जाके बहुत करते, इसको भी ऑस्ट्रेलियन आर्मी में भेजना है, तू जाके फाइंड आउट करो, सब इन्फॉर्मेशन जुटा लो। तो इसलिए मैं गई, रिक्रूटिंग में गई, सब इन्फॉर्मेशन देखा, घर आई, डैडी को बताया, भाई को बताया, भाई ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसमें चलो डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बना पर नेवी में जाऊँ तो डिफेंस में जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं वापस जाके और इन्फॉर्मेशन जुटाई। तो आर्मी में तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं एयरफोर्स देख रही थी, तो एयरफोर्स का यूनिफॉर्म अच्छा लग रहा था, प्लेन में जाओ ही ना सब बहुत अच्छी लगी। पर वहाँ पे एक ट्रेनिंग स्लाइड थी, उसमें ट्रेनिंग में एक बड़ी सी टावर में फेस डाउन एप्सेल करना पड़ता था। उसको देख के मेरा तो दिल ही बैठ गया बहन, क्योंकि मुझे ना हाइट से बहुत डर लगती है। तो मैंने उसे बाप रे मुझे ये सब ट्रेनिंग नहीं करना है, इतना फेस डाउन एप्सेल ये मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने नेवी की वीडियो देखी ना, तो नेवी वाले बोल रहे थे कि यू नो नेवी ज्वाइन हो, दुनिया देखो, सेल द सेवन सीज, हैव द एडवेंचर ऑफ योर लाइफ टाइम, और ये सफेद सफेद यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगा। तो एक प्रकार में मैं सोचू ना, बड़ा अपने आप को सिली लगती हूँ कि आई हैड नो आइडिया ना, एकदम नाइव कि ये मालूम नहीं था कि व्हाट आई एम गेटिंग माई सेल्फ इन टू ना। उस वक्त इंटरनेट का जमाना तो नहीं कि जाके और रिसर्च करो, बस अच्छा लग रहा था कि मुझे बड़ा एडवेंचर की बहुत शौक थी तो नेवी चूज किया।
आज से करीबन 24-25 साल पहले सेना में भर्ती होना, और वो भी सोचे समझे बगैर, या फिर यूं कहें कि एक्सीडेंटली नौसेना को ज्वाइन करना, कमला जी के माता पिता इस बात से काफी खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने कमला जी को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
तो जैसे मैं नेवी ज्वाइन होके आई ना, मम्मी डैडी तो बहुत दुखी थे, चाहते नहीं थे कि नेवी ज्वाइन हो, स्पेशली मम्मी तो एकदम अगेंस्ट कहती थी, कोई लड़की भी नेवी ज्वाइन होती है, आर्मी एयरफोर्स दूसरी बात, डैडी भी एकदम अगेंस्ट थे। बट उन डैडी ना मुझे हमेशा बड़ा किया कि मैं लड़की हूँ, ये लड़की होने की ये नहीं सोचना कि लड़कों से कम हो ना, तुम लोग लड़कियां लड़की एक होती है, कितने बातों में लड़कियां लड़कों से आगे होती है, तो ये मुझे बचपन से ये हिम्मत दी हुई थी डैडी ने। पर जब बात आई ना कि सचमुच में मैं लड़कों वाली, बस उस जमाने में लड़कियां थी पर ज्यादातर लड़कियां इवन ऑस्ट्रेलियन कल्चर के हिसाब में लड़कियां उतनी नहीं थी, तो डैडी को ऐसा लगा कि उसको रोकने से ही वुड फील लाइक ही इज बीइंग अ हिपोक्रेट ना। तो उसको मम्मी से क्वाइट में बताया कि मम्मी इसको जाने दो, अभी बहुत जोर करिए, जाने दो, ऑस्ट्रेलियन लड़की थी इतनी स्ट्रांग होती है, उनके पाँव कितने बड़े बड़े मोटी ताजी होती है, इतनी दुबली है, कुछ दिन में वापस आ जाएगी।
दोस्तों सेना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं बहुत कम होती हैं, या फिर वहाँ पर जो विकल्प हैं करियर के वो महिलाएं ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में आज से करीबन 2 दशक पहले नेवी में भर्ती होना, एक माइग्रेंट परिवार से होना, किस तरह से अनुभव रहा उनकी नेवी में नौसेना में तालीम के दौरान?
तो जैसे मैं नेवी में आई, बस में बैठ के हम लोग HMS सर्वरस पहुंचे, मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे एक भी एशियन नहीं है, एक भी ब्राउन नहीं है, लड़का लड़की कोई है ही नहीं। तो यूजली ना उस जमाने में माइग्रेंट जो भी होती दूसरी माइग्रेंट को देख के थोड़ा हिम्मत होती है, चलो एक चाइनीज है, कोई वियतनामी है, इससे दोस्ती हो गई तो उतना डर नहीं लगेगा। पर मैं देख रही हूँ यहाँ तो सबके सब गोरे के गोरे, एंग्लो सैक्सन सबके सब ना, सब जवान यंग, उतना तक नहीं, जब उन लोग बात करते थे तो एकदम वो कंट्री ऑस्ट्रेलिया ना, जैसे वो पॉल होगन बात करती है ना क्रोकोडाइल डंडी में, वैसा वाला इंग्लिश. तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इन लोग सबके सब ऐसा इंग्लिश क्यों बात करते हैं ना, मैं यूज टू नहीं थी, बड़ा अजीब सा लगता था. और सब लोग मुझे भी देखते थे, उन लोग भी सोचते थे कौन है ना. मुझे अभी भी मालूम है बस में मैं बैठी हुई थी, वो मेलबर्न एयरपोर्ट से 1.5 घंटा का रास्ता था, तो मैं खिड़की वाली सीट में बैठ गई और लोग आ रहे थे बैठने के लिए, कोई मेरे नजदीक में आके नहीं बैठा हुआ ना. तो मुझे ऐसा हो रहा था यहाँ पर तो कोई मेरे नजदीक भी नहीं बैठ रहा है, सारे ये सब शायद रेसिस्ट होंगे, पहले वही दिमाग में आया. फिर पूरा बस फिल होके सिर्फ एक जगह बाकी थी, तब वो सीट में एक लड़की आके बैठ के हंस के कहा ना एकदम ऑस्ट्रेलियन ह्यूमर से कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, डू यू स्मेल और समथिंग. बट थैंक गॉड कि मुझे वो ऑस्ट्रेलियन ह्यूमर मालूम था, कम से कम ऑस्ट्रेलिया में 10 साल बैठी हुई थी, क्योंकि हम लोग ना ऑस्ट्रेलियन लोग थोड़ी मजाकी तरीके से कभी इंसल्टिंग बात कर लेते, बट इट्स देयर वे ऑफ सेइंग आई लाइक यू ना, थैंक गॉड आई अंडरस्टूड दैट यू नो. फिर जैसे हम लोग एचएमएस सर्विस आके उठ रहे, हम तीसरा दिन था शायद, वो लड़कियां बहुत रो रही थी, लकीली मैं एक ही साल की थी, उन लोग ऐसे 18-19 साल, सो मेजोरिटी ऑफ देम वर यंगर देन मी, सो दैट वर्क्ड इन माय फेवर. उनको देख के मुझे थोड़ा डर कम हुआ, बोले इन लोग भी इतने डर रही है, रो रही है, कम से कम मैं तो बाथरूम में जाके रो रही हूँ, सबके सामने तो नहीं रो रही हूँ ना. तो इन लोग तो खुले खाम सबके सामने रो रही है, सब एक लड़की या दूसरी लड़कियां को कडल्स दे रहे हैं. तो मैंने उस 3-4 दिन में नोटिस किया कि इन लोग रेसिस नहीं है, बस इन लोग यंग है, शायद इनको बाहर के देश के साथ में इनका इतना रिश्ता बना नहीं हुआ, परहैप्स थोड़ा नाइव, थोड़ा इग्नोरेंट, बट नॉट रेसिस्ट. So that was a really important milestone for me to understand ki racism is not going to be issue for me. Issue hoga ye training wali.
Dosto, kai baar aapne suna hoga ki dar ke aage jeet hoti hai. Ya fir yun suna hoga ki jo log zid karte hain, wo zarur na zarur kuch badlav la sakte hain. Kuch nayi baat karne ke liye zid, lagan, mehnat, utsah sab hona bahut zaruri hai. Aur ye sari baaton ko kahin na kahin सार्थक करने वाली हैं कमला शर्मा विंग.
यू नो मिलिट्री, नॉर्मल मिलिट्री में जैसे आप बूट कैंप वाली मिलिट्री की मूवी देखती है ना, वैसा ही था. तो 4th दिन मैंने डैडी को फोन करके बोला कि रो रो के कि यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है ये वो. डैडी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, घर आ जा, तूने वहां पहुंच के ही ना हमारा नाक ऊंचा किया है, हम लोग सो बहुत प्राउड है ना, तो बस तू आ जा. पर मुझे अंदर अंदर लगा कि डैडी सोचते मैं फेल हो जाऊंगी ना, आई कांट डू इट. उसमें मुझे अंदर से एक और हिम्मत आई, तो वो एक जीत था. दूसरा था कि मैं एक ही ब्राउन थी पूरा स्कूल में, और मैं नहीं चाहती कि कोई समझे मैं डर गई, जबकि मैं डरी थी अंदर ही अंदर, बहुत डरी हुई थी, बट मैं चाहती नहीं कि दुनिया देखे मैं डर गई ना. और दूसरी थी नेपाली लोगों, स्पेशली गोरखा लोगों का इतना नाम था दुनिया में ना, अभी भी इतना नाम है कि गोरखा लोग बहुत बहादुर होते, तो मुझे ये और प्रेशर अपने आप डाला. चौथा, मैं हमेशा भगवान को याद करती थी, हमेशा जब भी डर होती थी ना भगवान को याद करके कर लेती थी.
कमला जी बताती हैं कि नौसेना अधिकारी के रूप में जब वो नई नई भर्ती हुई थी तो उन्हें जहाज पर जाने के लिए बहुत ही उत्सुकता थी. सी सिकनेस, शाकाहारी खाना, ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा. वो कहती हैं कि जब वो शिप पर गई तो शुरुआत का जो वक्त था, शी hated it.
सी में जाना मेरा बहुत बहुत मन था उस वक्त, ट्रेनिंग में देखा, वीडियो में देखा, समुद्र में जाके शिप इधर उधर रफ सी में जाओ ना, आई यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड वो एडवेंचर. तो मैंने बहुत जोर किया मुझे जल्दी जाना है. तो नेवी ने मेरा आई थिंक 2000, सो मैं 95 में ज्वाइन हुआ, 2000 में उन लोग ने मुझे भेज दिया. और जैसे गया तीसरा दिन हम लोग शिप में निकल गए, और आई हेटेड इट, एब्सोल्युटली हेटेड इट. मैंने बोला ये मैंने कैसा स्टूपिड काम किया, मुझे तो जाने की इतनी जल्दी भी नहीं थी, आ गई ना, सब इतना रफ बात करते हैं, सब लोग एकदम एकदम वो पॉल होगन से भी स्ट्रांग वाली इंग्लिश में बात बोलते हैं ना, और एकदम कोई हंसते भी नहीं है, स्माइल भी नहीं है, और काम भी इस 16 लड़कियों के साथ मुझे कैबिन शेयर करना पड़ता है, वो सब बंक बेड होती है ना. सो इट वॉज अ मैसिव चेंज, मैसिव डिफिकल्टी, मेरे लिए नहीं, लाइक सभी के लिए था, बट उस वक्त ऐसा लगता है कि मैं ही सफर कर रही है और नहीं कर रहा है ना. उसके ऊपर फिर सी सिकनेस, हे भगवान, सी सिकनेस तो जिसकी भी प्रेगनेंसी हुई ना उनको मालूम होगा, वो होती है ना जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस और सी सिकनेस एक ही होती है, इट्स रियली बैड ना। तो मैं सफर काफी किया उस वक्त ना सी सिकनेस, और मुझे मालूम है फीजी पहुंचने वाले थे 11वां दिन। मैंने तो सोच लिया, ठान ही लिया कि नहीं, अभी मुझे ये एक साल कर लिया शिप में, दैट्स इट, मुझे मेरा पूरा जिंदगी उस शिप में बैठ के सेल करके ऐसा नहीं गुजारना, मैंने ठान लिया था। डिस्चार्ज भी डाल दिया मेरे चीफ को देके, मैंने बोला मुझे एक साल किया उसके बाद दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट एनी मोर, इतना मैं सीरियस थी। वो थोड़ा हंसी ना, स्माइल किया, कहा कि कमला यू आर नॉट दी ओनली वन, अदर्स आर हियर टू ना। पर जब अपने सफरिंग में ना दूसरा का सफरिंग उतना जल्दी से दिखाई नहीं देती है ना। एनीवे जैसे कि वो 3 महीने का ट्रिप हुआ, तो मैंने मेरे बॉस से कहा कि मुझे वो डिस्चार्ज पेपर नहीं करना है, आई एम एक्चुअली क्वाइट एंजॉयिंग इट ना। और थोड़े चैलेंजेस आए जैसे कि खाना के चैलेंज, मैंने भी ज्वाइन होके एक साल के बाद मैं वेजिटेरियन बन गई। पहले मैं सब मांस मछली खाती थी, तो वेजिटेरियन खाना का थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था। बट बेचारे लोग ना उस जमाने में वेजिटेरियन इतना बड़ी नहीं थी, बट कुक्स लोग ना बहुत कोशिश किया कि मेरे लिए हेल्थी डाइट हो ना। उनको जाके मैं सिखाती भी थी, ऐसे दाल बनाते, ऐसे सब्जी बनाते, करी में ये स्पाइसेस डालना होता है, तो उन लोग ने काफी कोशिश की मेरे लिए एडजस्ट करने के लिए। बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग वाज कि हमेशा जितने भी चैलेंजेस आए ना उसको ओवरकम करना मेरे ऊपर था। ऐसा नहीं कि मैं सामने वाले को देख के नहीं कहती थी कि ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो।
दोस्तों, अक्सर महिलाओं पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार का ख्याल भी रखें, एक अच्छी बहू, बेटी, माँ, बहन का फर्ज भी निभाए। और लोग अक्सर कमला जी को ये पूछते हैं कि नौसेना अधिकारी के रूप में जब वो महीनों तक समंदर पर होती हैं, तो उनके परिवार को क्या वो समय दे पाती हैं? किस तरह से वो अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करती हैं? और इसके जवाब में कमला जी कहती हैं कि
तो मैं नेवी में जब मैं शुरुआत फर्स्ट मंथ की ट्रेनिंग में मैं अपने हस्बैंड को मिली ना, उसके हम लोग की रोमांस नेवी के रिक्रूट स्कूल में से शुरू हुआ ना। हम लोग तो हम लोग के नेवी के 1.5 साल के अंदर हम लोग के शादी भी हो गई। और बिकॉज मेरे हस्बैंड भी नेवी में थे और ही अंडरस्टूड कि लाइफ क्या होती है शिप में, सो दैट वाज ए बिग हेल्प। और हम लोग के बच्चे नहीं थे ना, हम लोग फर्स्ट 10 ईयर्स वी डिडंट हैव चिल्ड्रन, सो दैट वाज ए बिग हेल्प नॉट हैविंग किड। कभी वो चले जाते थे, कभी मैं चली जाती थी, एंड दैट वाज हार्ड ना, वेरी डिफिकल्ट। बट हम लोग ना कोशिश काफी किया कि हमेशा चिट्ठी लिखने का। तो पहले शुरुआत में जब मेरे हस्बैंड उस वक्त सबमरीन में था, तो उसको ईमेल करने को अलाउ नहीं था, चिट्ठी खाली। तो बेचारा हर हफ्ता 14 पेज का चिट्ठी लिखता था मुझे ना, और मैं भी उसको लिखती थी भी। हम लोग कम्युनिकेशन वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा एक दूसरे को चिट्ठी लिखना, गिफ्ट भेजना, बात करना, किसी चीज की कभी तकलीफ हो तो खुल के बात करना, दैट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और ग्रैंड और मेरे लिए तो ये और भी बड़ी बात थी, बिकॉज हम लोग की कल्चर भी अलग है ना, वो ऑस्ट्रेलियन और मेरी कल्चर अलग है, तो वी कुडंट जस्ट एक्सपेक्ट कि वो समझ जाएगा, बिकॉज उसके सोचने का ढंग अलग है, मेरा अलग है। तो इट वॉज इवन मोर इम्पोर्टेंट कि हम लोग सिंपल सी बात भी खुल के क्लियरली बता दे। सो कभी कभी लोग कहते थे कि तुम लोग तो दोनों अलग अलग कल्चर के हो, वो भी नेवी में हो, उसमें दूर दूर कभी महीनों महीने सी में चले जाते, हाउ डू यू मेंटेन योर रिलेशनशिप? An answer is a universal answer, communication. और दूसरी बात थी मम्मी डैडी के साथ यू नो इतना दूर रह के रिश्ता रखने का। अगेन सेम थिंग, जब भी मुझे पोर्ट में जाती थी तो मैं फोन करती थी, उनसे बातें करती थी, चिट्ठियाँ लिखती थी, गिफ्ट भेजती थी ना। और जब जैसे मैं घर आ जाती थी तो सीधा मम्मी डैडी को भेज मिलने के लिए जाती थी ना। सो उसी वजह से हम लोग की यू नो डिफिकल्टीज आई, बट उतना नहीं कि संभाल नहीं सके। इनफैक्ट मुझे लगता है इट ओनली मेड अस स्ट्रॉन्गर। सो जैसे मेरे 2005 में मेरे बेटा हुआ, उसके बाद 2007 में बेटी हुई, तो मेरा प्लान यही था कि जैसे बच्चे 2-3 साल का होगा, मेरा शिप में जाने का प्लान आई हुई थी। पर जैसे मेरे बेटे को गोद में लिया उसके पैदा होने के बाद, वेल एज ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड वुड नो, सब कुछ बदल गया। फिर भी वक्त लगा, ऐसे 4-5 वर्ष लगा जैसे कि मैंने फुल्ली एक्सेप्ट किया कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है।
अपने काम के साथ लगाव और समझौता, ये दोनों करने के कारण कमला जी जो शुरुआत के वर्ष थे अपने माँ बनने के, उन्हें बेहतर तरीके से निकाल पाई। आज भी वो नौसेना की अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। और अंत में जाते हुए कमला शर्मा विंग कहती हैं कि
दो मैसेज है मुझे कम्युनिटी के लिए। एक है कि हम लोग ना जो दो अलग अलग कल्चर में बैठे हुए, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है। हम लोग की इतनी यूनिक सर्कमस्टेंसेस है कि हम लोग अच्छे बात लेके, बुरी बात को छोड़ के अच्छी बात लेके आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को आगे कर सकते, अपने देश को आगे कर सकते, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट कर सकते हैं ना। और दूसरी मेरा मैसेज है हाउ टू बैलेंस योर करियर एंड मदरहुड। मैं कहती हूँ हम औरतें सभी चीज कर सकते हैं, शायद एक साथ नहीं। आज जो भी काम करे मन लगा के अच्छी तरह से करे, वो करियर हो या मदरहुड, एक साथ या अलग अलग समय पर। हम सब का अपना अपना अलग अलग पर्सनालिटी होती है, इसे आप अपना लो और किसी और के साथ कंपेयर करके दुखी ना हो, ये मेरी मैसेज है।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।